चलो अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्ट, आराम से एकदम करेंगे स्टार्ट और थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। फादर ऑफ आर्किटेक्ट हमने देखा था कल भी, फादर ऑफ आर्किटेक्ट किसे कहते हैं कंप्यूटर का, जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। न्यूमैन था इसीलिए उसने नया आर्किटेक्ट बना दिया, इसलिए फादर ऑफ आर्किटेक्ट कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर का आर्किटेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1970 में पहला आर्किटेक्ट आया था, कंप्यूटर तो पहले ही आ गया था। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम से देख लेंगे। इनपुट यूनिट्स आती हैं, ठीक है, आउटपुट यूनिट्स आती हैं। इनपुट यूनिट्स क्या हो गई, हमने देखा था माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह सब क्या है, इनपुट यूनिट्स है। ये भी किसके अंदर आती है, कंप्यूटर के आर्किटेक्ट के अंदर ही आती है। फिर दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है सीपीयू। फिर आउटपुट यूनिट देख लेते हैं पहले। आउटपुट यूनिट जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट यूनिट है, प्रिंटर इनपुट यूनिट नहीं है, क्योंकि प्रिंटर कुछ आपको निकाल के दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है आपको, ठीक है। जो चीज़ रिजल्ट देती है वो आउटपुट यूनिट होती है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया उसमें डायरेक्टली जो है आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है, तो वो क्या है, आउटपुट यूनिट। वैसे ही प्रिंटर से उसको प्रिंट निकलवा लिया, आउटपुट यूनिट, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक चीज़ होती है क्या, सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन इस चैप्टर के अंदर किया गया है, तो चिंता मत करना। बस ये देखो सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट आती है, एक आती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे ALU कहते हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो प्लस माइनस वाले जो जितने भी कैलकुलेशन सम होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं, लॉजिकल टास्क जितने होते हैं सब ALU के अंदर होते हैं। फिर होती है हमारी स्टोरेज, स्टोरेज में भी दो चीज़ होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ से थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ये दे नहीं रखा है। प्राइमरी स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा आ गया प्राइमरी स्टोरेज जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हार्ड डिस्क क्या मेन मेमोरी में आता है, तो आंसर होगा रॉन्ग, नहीं आता। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ना कि मेन मेमोरी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, उसके अंदर आता है हमारा रैम, ठीक है, उसके अंदर आता है हमारा रोम। जो रैम होता है उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, मतलब क्या, उसके अंदर रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं और उसके अंदर वो इरेज भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोम जो होता है उसके अंदर हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, एक बार ही राइट होता है, उसके बाद दोबारे कभी राइट नहीं होता, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये थोड़ा सा याद रखना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। उसके बाद आती है हमारी कैच मेमोरी। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है देखते हो ना, कुछ वर्डिंग सी आती है उसके अंदर, वो कहाँ पे आती है, रोम के अंदर आती है, और बाकी सारी चीज़ जो टेम्प्रेरी टाइप की होती है वो रैम के अंदर होती है। कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी एक तरह की मेमोरी है, मेन मेमोरी के अंदर ही आता है, ठीक है। ये भी कैच मेमोरी, जब आप कोई साइट खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने के ऊपर, फिर उसके कैचेस बन जाते हैं, ठीक है, सुना तो होगा ये वर्ड, कैच बन जाते हैं, कैच को डिलीट करो। वो कैच क्या है, वो एक टेम्प्रेरी मेमोरी बन गई है आपको फास्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए वो साइट का। एक बार जब वेबसाइट खोलते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार तुरंत खुल जाती है, क्यों, क्योंकि उसके कैचेस बन चुके होते हैं। तो वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे कैच मेमोरी के अंदर, समझ आ गया। प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है। उसके बाद हमारे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर भी मेमोरी का काम करते हैं, और किसके अंदर आते हैं, हमारी मेन मेमोरी के अंदर। रजिस्टर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड खोल रखा है, लेट्स से आपने गूगल डॉक खोल रखा है या फिर कोई भी वर्ड की या पावर प्रेजेंटेशन कुछ भी खोल रखा है, आपने कंट्रोल ए करा, सेलेक्ट कर लिया सारा, उसके बाद कट करा, वो कट करने के बाद कहाँ गया वो सारी चीज़, वो टेम्परेरी तौर पे कहाँ सेलेक्ट हो जाता, सेव हो जाता है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। फिर पेस्ट कर देते हो दोबारा उसके अंदर चला जाता है। तो ये क्या चीज़ें, ये सारे रैम, रोम, कैच और रजिस्टर, ठीक है, ये तीन, ये चारों चीज़ें क्या है, ये हमारी मेन मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी हार्ड डिस्क आ गई, ठीक है, जहाँ पे हम सारी जो वीडियो डाउनलोड कर करके रखते हैं, मूवी रख रखी है, वो सारी चीज़ क्या आती है, हार्ड मेमोरी। उसके बाद अभी हार्ड ये जो हार्ड डिस्क होती है ये हमारी एक्सिलरी जो मेमोरी के अंदर आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इसकी हार्ड डिस्क की तरह एक छोटी सी प्लेट और आ गई है, पहले तो नहीं होती थी, अभी आ गई है SSD जिसे कहते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा बहुत फास्ट खुल जाता है, सारे जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाते हैं SSD से। तो ये जो SSD है ये भी किस में आती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज के अंदर आती है, ये हमारी मेन मेमोरी नहीं है, इस चीज़ को याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क हो गई, जैसे हमारी सीडी ड्राइव, ठीक है, ये क्या है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क है सीडी डीवीडी वाली, ये किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी। और हमारा फिर मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप जो बैकअप थोड़ा सा प्रोवाइड कराता है, लेट से आप जब कुछ डिलीट कर देते हो, वो डिलीट करा हुआ आइटम कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है क्या, नहीं, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। वो रिसाइकल बिन वाला कहाँ सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा है हमारा मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। तो ये चारों चीज़ हमारी क्या चीज़ है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी एक्सिलरी स्टोरेज के अंदर आता है। ये इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा सीख लेना, कौन सा प्राइमरी स्टोरेज है, कौन सा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ गया। कभी कोई पूछेगा, कोई कौन क्या पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ही पूछेगा कि कौन सी मेमोरी किस में आती है, तो बता दोगे। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला इसमें दे नहीं रखा था, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU भी बोलते हैं। पेन ड्राइव हमारा आता है सेकेंडरी में। देखो अंजलि, जब हमारी ऑप्टिकल डिवाइस SSD, हार्ड डिस्क सारे पेन ड्राइव जैसे ही काम करते हैं, तो ये जब सेकेंडरी मेमोरी में आ रहे हैं, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें भी सेकेंडरी में ही आएगा। आपका ये जो कार्ड हो गया, पेन ड्राइव के बाद एक आता है ना कार्ड, आता है जो मोबाइल में लगता था पहले, शायद अब तो लगता नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे, कुछ मेमोरी कार्ड, हाँ मेमोरी कार्ड बोलते हैं शायद, वो भी किस में आएगा, सब सेकेंडरी में। बाकी जितना भी रह गया सारा अपना सेकेंडरी में डालो, ठीक है। उसके बाद आप कंपोनेंट देख लेते हैं। इसमें एक जो चीज़ है वो क्या, ये हाँ जो प्राइमरी मेमोरी है, ये देख रहे हो यहाँ पे कि ये CPU के अंदर ही है एक तरह से, मतलब होता तो ये भी अंदर है, लेकिन ये इसका इनबिल्ट पार्ट है, रजिस्टर हो गया, कैच मेमोरी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, लेकिन ये वाला इसका अटैचमेंट है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, SSD हो गया, साइड में से अटैच कर देते ना, ये इसका इनबिल्ट है शायद, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। तो थोड़ा ऐसे करके भी हम पता लगा सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं, इसको आगे से देखते रहेंगे। इनपुट हो गया हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया हमारा, मेमोरी यूनिट हो गया, ये सारे किस में आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं किस में, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे हमारा सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट क्या होता है। देखो जिस प्लास्टिक केस के अंदर हमारा जो सारा पार्ट स्टोर रहता है, ठीक है, जिसे हम CPU बोल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट, ठीक है। यही लिख रखा है यहाँ पे, जो जितना भी हमारा कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है जिसने होल्ड कर रखा है, क्या चीज़ हो गया, वो हमारा सिस्टम यूनिट हो गया, हमारा जो डब्बा जिसे CPU बोलते हैं ना, लेके आते हैं मार्केट से, उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। ये थोड़ा याद रखना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम यूनिट इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट है, ऐसे करके बोल देगा। तो हमारा जितना भी वो बेसिकली जो प्लास्टिक केस है, उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी। उसके बाद अब आते हैं ये जो हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि आर्किटेक्ट देख रहे हैं तो कंप्यूटर के इस कंपोनेंट को देखेंगे हम। सबसे पहले इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट ऐसा जिसमें इतना डूबने की ज़रूरत है नहीं वैसे। इनपुट यूनिट में हमारा माउस हो गया, जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, सारी चीज़ किस में आती है हमारी, इनपुट यूनिट। यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद आपका जो सिग्नेचर वाला पेन होता है, ये हमारा, ये टैब हो गया, ये पेन टैब हो गया, सब क्या है, सब इनपुट यूनिट के अंदर आया, जो अंदर की साइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, कोडेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोल लो, इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करा रही है एक तरह से, वो क्या चीज़ है हमारी, इनपुट यूनिट। समझ आ गया इनपुट यूनिट क्या होती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना बेसिकली उसका टास्क होता है, बाकी ये लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो मेन काम है वो चेंज नहीं होगा। उसका काम क्या है, सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। आउटपुट यूनिट हो गई, तुमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, या फिर तुमने जो टास्क उसको दिया, इंस्ट्रक्शन उसको दी, उसने उसको प्रोसेस करके उसको तुम्हें रिजल्ट दिया, ठीक है, वो रिजल्ट जहाँ पे तुम्हें मिलेगा वो क्या चीज़ है हमारी, आउटपुट यूनिट। जैसे हमारा मॉनिटर पे मिलता है, जैसे हमारा प्रिंटर पे मिलता है, रिजल्ट मिल रहा है ना वहाँ पे, वो क्या चीज़ है हमारी, आउटपुट यूनिट। यहाँ पे प्लॉटर भी दे रखा है, प्लॉटर देख लेते हैं क्या चीज़ होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सर्च भी करना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें हमारे माइंड में ही नहीं रहेगी। प्लॉटर कंप्यूटर टाइप का कुछ होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्लॉटर, ये वो जो छापते रहते हैं ना बैनर वगैरह वैसे टाइप का है, ये भी क्या है हमारा प्लॉटर आउटपुट यूनिट। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके याद रखने ना, प्लॉटर नाम सुनने में लग रहा है इनपुट यूनिट है लेकिन है आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये बाकी चीज़ चेंज होती रहेगी लेकिन जो मेन चीज़ है आउटपुट यूनिट वो क्या आपको रिजल्ट दे रही है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रोसेस करके फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो है आउटपुट यूनिट में मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्रिंटर में मिले, प्लॉटर में मिले या मॉनिटर में मिले। उसके बाद दो चीज़ हो गई हमारी, तीसरी चीज़ है CPU। CPU की फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, कई कई बच्चे भूल जाते हैं। तो सिंपल इसकी जो है फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, CPU के अंदर हमारी तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी रजिस्टर वो नहीं जिसमें वीरभद्रा सर जो है आपको GK लिखवाते हैं, ये वो वाला है जिसमें मेमोरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी वाली। ठीक है, दूसरा है हमारा ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हमने देखा था ना ऊपर वाले जो फिगर देखी थी उसमें था ALU, जिसमें जो है प्लस माइनस और लॉजिकल टास्क जितने भी होते हैं सारे ALU में होते हैं वो। प्लस इसके साथ एक चीज़ होती है कंट्रोल यूनिट, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, कौन सी चीज़ें कहाँ जाएगी वो चीज़। ये तीनों चीज़ होती है किसका पार्ट है हमारी, CPU का पार्ट है, इतना थोड़ा सा याद रखना। वैसे उस फिगर में क्लियर हो गया था लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग से लिख दिया, थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ते रहना, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। उसके बाद हमारा यस ये वाला CPU के अंदर जो हमारा एक सिंगल IC सर्किट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली उसको एज अ हार्ट बोलते हैं शायद कंप्यूटर का, जो एकदम अंदर एक IC की चिप होती है ना, ये आएगा आगे देखेंगे। ठीक है, विच डिवाइस कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या आंसर होगा इसका, ALU ऑप्शन में दे रखा है, कंट्रोल यूनिट दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है और CPU दे रखा है। इसका आंसर क्या होगा, विच CPU, ALU, रियान ने बोला ALU, रियान सो रहा है, कोई बात नहीं रियान, थोड़ा सा पानी पियो, अभी तो सामने ही है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, CPU क्या करता है, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, इंटरनल डिवाइस हो गया। ठीक है, दोनों को कंट्रोल करता है क्योंकि बीच में है ना CPU हमारे। उसके बाद चाहे वो अर्थमेटिक फंक्शन हो गया, चाहे वो लॉजिकल फंक्शन हो गया, उन सबको भी कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है हमारा, CPU करता है। देखो ऐसे फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें नंबर डिसाइड करती है और एक एक नंबर के पीछे फिर लोग रोते हुए देखे हैं मैंने, तो वो रोना मत, थोड़ा सा वैसे करना आंसर। ठीक है, देखो जो ALU है, अगर सिर्फ इतना आता है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU होता है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, CPU, क्योंकि CPU के अंदर आता है ALU। ठीक है, उसके बाद अब ALU को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, CPU के अंदर कौन कौन सी तीन चीज़ें आती हैं, अच्छा तुमने लास्ट वाला सुना था, कोई प्रॉब्लम नहीं रियान, RAC, अरे गर्व ने तो शॉर्टकट बना लिया, RAC आती है CPU के अंदर, अच्छा मैंने ही बना रखा है ऊपर, चलो लिखे रहने दो उसे, CPU, RAC। ठीक है, रजिस्टर हो गया R, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, उसके बाद कंट्रोल यूनिट RAC, तीनों हो गया। हम तीनों से किसका पार्ट है हमारा, CPU का। वैसे CPU तो है, RAC क्लियर करवा देता है लेकिन यहाँ पे RAC आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आप आगे चलते हैं, इसके सब पार्ट्स देख लेते हैं, सब सिस्टम देख लेते हैं तीनों चीज़ को। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है बेसिकली, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ ध्यान दो। काम क्या करता है हमारा, ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसको मैनेज करता है हमारा ALU, जो CPU के अंदर होता है। ठीक है, रजिस्टर का काम क्या होता है, ALU रजिस्टर को भी यूज़ करता है, वैसे रजिस्टर का काम हमने देख लिया था जो डेटा होता है उसको टेम्परेरी रूप में होल्ड करके रखता है, वो काम होता है किसका, रजिस्टर का। लेकिन जो ALU है वो रजिस्टर को भी यूज़ करता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मेन ALU का काम क्या है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो है फंक्शन करता है, ऑपरेशन करता है ALU हमारा, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि जो ALU है हमारा वो रजिस्टर को यूज़ करता है ये डेटा को होल्ड करने के लिए, ठीक है, ये वाली लाइन, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग पढ़ा हुआ है और ये यहाँ पे ALU भी रजिस्टर को यूज़ कर रहा है और वो करता ही है क्योंकि सबका कंबाइन फंक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी ये एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सओर गेट, ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाला जो मामला है वो हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, बस ये याद रखना कि ये एंड गेट, नैंड गेट किसके अंदर होता है हमारा, ALU के अंदर होता है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन किसके अंदर होता है हमारा, ALU के अंदर होता है। कंपैरिजन वगैरह मतलब जितने भी दिमाग वाले काम होते हैं ना वो सारे किसके अंदर होते हैं, ALU के अंदर होते हैं, सिंपल चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल फंक्शन और अर्थमेटिक फंक्शन, सारी चीज़ कहाँ पे होती है हमारी, ALU के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा रजिस्टर आ गया, रजिस्टर मैंने बता ही दिया था तुम्हें क्या होता है, टेम्परेरी रूप पे जो अपना डेटा को होल्ड करके रखता है, जैसे बताया था ना कि कट करते हो, जैसे कट कॉपी पेस्ट करते हो, वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। और ये मेमोरी के अंदर टॉप हायरार्की में आता है, इस चीज़ को, इस लाइन को थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना कि टॉप हायरार्की में मेमोरी में कौन सा आता है, हमारा रजिस्टर आता है, क्योंकि सबसे जो बेसिक चीज़ है वहीं से होती है, ठीक है, और फास्ट तो होता ही होगा रजिस्टर हमारा, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होगा कि ये जो सारे हमारे CPU के अंदर फंक्शन थे, रजिस्टर हो गया, ALU हो गया, इनको कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, ठीक है। इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, कोऑर्डिनेशन बैठाना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, बस यही बेसिक फंक्शन था। कैसे करेगा, कंट्रोल सिग्नल वगैरह भेज के करेगा, इसको रहने दो, एकदम वो मत देखो कि इन्फॉर्मेशन के अंदर घुस के इधर से उधर जा रहे हो, ऊपर ऊपर देखो सारी चीज़ें, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन किसका है, बेसिकली फंक्शन ही पूछता है तो वही देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन चीज़ें देख ली, ALU, RAC देखते हैं, ठीक है। RAC रजिस्टर क्या करता है हमारा, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करता है, ठीक है, मेमोरी सिस्टम में टॉप हायरार्की पे हमारा RAC, आर मीन्स रजिस्टर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, ALU, जो भी काम होता है दिमाग से रिलेटेड, कैलकुलेशन हो गया, कुछ भी, कुछ जिसमें भी जो लॉजिकल फंक्शन लग रहा है या फिर अर्थमेटिक्स लग रही है या फिर दिमाग लग रहा है, जिसमें भी कैलकुलेटिंग जो टास्क लग रहा है, वो सारे काम हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है। और इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट, CPU का एक तरह से ये कंट्रोलिंग टास्क करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये तीनों चीज़ कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, हमारी CPU, ठीक है। ठीक है, इतना है समझ, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला था नहीं, सारी चीज़ तो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे सबसे महंगा पार्ट कहते हैं हमारे CPU का, मदरबोर्ड के अंदर इंटेल का लगा होता है सबके अंदर, इंटेल, अब तो पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं, कोरेक्स और ये और पता नहीं क्या क्या चीज़ आ चुकी है, अब मेरे को पता भी नहीं इतना। माइक्रो प्रोसेसर एक देखा जाए तो एक बेसिकली चिप ही होती है, ठीक है, दिखाता हूँ तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर, मैक्सिमम ने को तो पता ही होगा लेकिन एक इक्के दुक्के जो मेरे जैसे हैं उनको नहीं पता होगा। माइक्रो प्रोसेसर, ये देखो, ये वाला देखा ना, ये चिप देखते होंगे, इसे कहते हैं हम क्या, माइक्रो प्रोसेसर। PCB होता है, ये मेन हार्डवेयर है, मेन हार्डवेयर है, मेन पार्ट है ये कंप्यूटर का, ठीक है। PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस भी इसे कहते हैं, इट इज़ अ लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कौन कौन से होते हैं, कोई इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट था उसको ज़रूर याद रखना, इंटेल 4004 सबसे पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, सबसे महंगा पार्ट, सबसे मेन हार्डवेयर है ये, हाँ माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं तो हम माइक्रो प्रोसेसर को टच कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं बाहर, लेकिन निकालना मत, ख़राब हो जाएगा तो बहुत महंगा आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेल सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय टेड हॉफ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था टेड हॉफ, इंजीनियर का नाम था फैगिन। बस दो नाम याद रखना, टेड हॉफ एंड फैगिन, दोनों ने बनाया था हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 में, इंटेल 4004। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे आते हैं, कोई नाम रखने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर मेन हार्डवेयर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये तो कॉमन गैस हो भी जाएगा, लेकिन मेन हार्डवेयर वाला और किसने करा था ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट हमने ऑलरेडी देख ली है, प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से उसमें पार्ट आते हैं, कौन से नहीं आते, हमने सारी चीज़ देख ली है। ठीक है, इनपुट डाटा, चलो छोड़ो ये हो गया हमारा पैसे वैसे पूरा मेन मेमोरी। उसके बाद हमारा आता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर में कन्फ्यूज़ मत होना, मदरबोर्ड पूरा वो बड़ा सा जो एक प्लेट रहती है ना, जब किसी ने कंप्यूटर तो खोला ही होगा, जिसके घर में कंप्यूटर होगा उसने कंप्यूटर खोला होगा, कंप्यूटर खोलने के बाद उसके अंदर एक बड़ी सी प्लेट रहती है, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रही है, रिफर्बिश्ड है वैसे, देखो ये देखो दिख रही है, ये जो बीच में ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, रुको एक मिनट इधर लेके आता हूँ, तब दिखेगा। ये गेमिंग का कंप्यूटर है, बड़ा पावरफुल, ये देखो ये पूरा जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है हमारा मदरबोर्ड है, और यहाँ पे क्या लगता है हमारा, यहाँ पे लगता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये शायद माइक्रो प्रोसेसर ही लगा हुआ है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है जो नॉर्मल कंप्यूटर है, ये काला काला थोड़ा ज़्यादा सा डिज़ाइन कर रखा है, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट होता है, तो मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, एकदम कॉमन चीज़ है ये वैसे। चलो आगे चलते हैं, मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है। ठीक है, इसे कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड, या फिर लॉजिक बोर्ड, या फिर सिस्टम बोर्ड, या फिर प्लानर बोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड को तीन और नामों से जानते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, इसको तो गैस कर लोगे, लॉजिकल बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड की बात कर रहे हैं मतलब मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, सिस्टम बोर्ड लिखा हुआ है मतलब मदरबोर्ड लिखा हुआ है, प्लानर बोर्ड लिखा हुआ है मतलब मदरबोर्ड है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अलग अलग नामों से वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है और गलती हो जाती है। ठीक है, मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है, उस मेन सर्किट बोर्ड में जो मेन चिप लगी होती है उसका नाम क्या होता है, बताओ क्या नाम होता है, सो गए क्या सारे, माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, पीसीबी बोला किसी ने, हाँ पीसीबी है गर्व रावत, ठीक है, पहला कौन सा है पीसीबी, ठीक है, किसने बनाया था, किसने बनाया था, टेड हॉक का, और ये तो साइंटिस्ट था दूसरे वाला, हाँ ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल बताओ, कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी में आता है, ठीक है, पेन ड्राइव किसने पूछा था, क्या किस, ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड देख लेते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लियरली इसको याद रखना। ठीक है, सीमोस बैटरी मदरबोर्ड का पार्ट, फैन लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है, प्रोसेसर चिप लगी होती है, ये नाम याद रखना, जिसको कंप्यूटर नहीं पता उसके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा, जिसको पता है उसके लिए तो बहुत ये बच्चों वाला खेल होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा याद रखना होगा। बी आई ओ एस चिप हो गया, एक्सपांशन स्लोट हो गए, एक एक करके देख भी लेंगे इसको, PCI स्लॉट्स हो गए, और जो उसके अंदर बहुत सारी तारें होती हैं उसे क्या कहते हैं, बसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, हमारे मदरबोर्ड का पार्ट होती हैं। इसके अंदर दिख भी जाएगी दो तीन चीज़ें। तो मोर ऑर लेस सारी चीज़ें जो हैं हमारी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होती हैं। रैम भी उसके अंदर ही लगी होती है, रोम भी उसके अंदर ही लगी होती है, और ग्राफिक कार्ड वार्ड सब उसी के अंदर लगा होता है। छोड़ो इसको देखना, इसके नाम याद रखना बस, ठीक है। सीमोस बैटरी, फैन, फैन को थोड़ा याद रखना, जिसको नहीं पता वो सोचेगा दीवार पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे नहीं लगा होता, वहाँ पे भी लगा होता है ठंडा करने के लिए उससे। SMPS प्रोसेसर चिप हो गई, ठीक है। बसेस बोलेगा रोड पे चलती है, नहीं होगा, बसेस भी होगा, ऐसी ऑप्शन देके फंसाते हैं ना। बसेस, फैन यहाँ पे गलत होगा, PCI स्लॉट कर दोगे सही, BIOS चिप कर दोगे, कहोगे बड़ा सा नाम है यही होगा, हो जाएगा वही एक्सपांशन स्लॉट, लेकिन ये जो बसेस हो गया और ये जो फैन हो गया ये भी हमारा मदरबोर्ड में होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंटरकनेक्शन यूनिट्स, बसेस, बसेस उसके अंदर जो हमारा मदरबोर्ड होता है, देखा होगा ना कि यहाँ से एक तार कनेक्ट कर दी और वहाँ लगी हुई है, अगर खोल के देख लिया होगा तो जाली जाल तारों के हैं। वो तारे क्या हैं, हमारी बसेस हैं। बसेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बसेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक हो गया इंटरनल बसेस, हो गया एक्सटर्नल बसेस। जो मदरबोर्ड के इंटरनल डिवाइस को कनेक्ट करती है उसे इंटरनल बसेस कहते हैं, और इंटरनल डिवाइस को एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करती है उसको एक्सटर्नल बसेस कहते हैं। इंटरनल बसेस के अंदर भी तीन बसेस और आ गई, कंट्रोल बसेस जो कंट्रोल सिग्नल भेजती है, एड्रेस बसेस जो एड्रेस सिग्नल भेजती है, और एक डाटा जो भेजती है उसे डाटा बसेस बोलते हैं, ठीक है। किसका पार्ट है, हमारे इंटरनल बसेस का, ठीक है। फिर हमारी एक्सटर्नल बसेस हो गई, एक्सटर्नल बसेस वही सारी चीज़ एक्सटर्नल वाला है, कुछ दे नहीं रखा है ऐसा, छोड़ो उसको। एक चीज़ याद रखना बस, इंटरनल बसेस को हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टम बस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस को हम, एक्सटर्नल बसेस को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपांशन बसेस, एक्सपांशन ही नहीं है, हाँ एक्सपांशन, एक्सपांशन बसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सिस्टम बस कौन सी है और एक्सपांशन बस कौन सी है। तो हमारी जो कंट्रोल बस हो गई, एड्रेस बस हो गई, डाटा बस हो गई, ये कौन सी बसेज है, हमारी सिस्टम बसेज हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, सिस्टम बसेज में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, हमारी कंट्रोल बसेज हो गई, एड्रेस बसेज हो गई, डेटा बस हो गई। एक बार इसको दोबारा से क्विकली रिवाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ तक आते आते थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई होगी। टिट बिट्स, इससे पहले एक मिनट रुकते हैं, टिट बिट्स तक एक मिनट लेते हैं और दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या अभी तक देख लिया एकदम क्विकली, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ हो जाएगी क्लियर। सबसे पहले हमने देखा था इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कमांड प्रोवाइड कराती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती है हमारे CPU को, काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, जैसे हमारा हो गया माउस, जैसे हमारा हो गया पेन टैब हो गया, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आती है। फिर हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दूसरी चीज़ थी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर तीन चीज़ें थी, एक था रजिस्टर जिसे मेमोरी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट थी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट थी। हमने देखा था अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो थी उसके अंदर क्या चीज़ें थी, उसके अंदर जितने भी दिमाग वाले काम होते हैं सारे ALU के अंदर होते हैं। उसके बाद ALU जो है रजिस्टर का यूज़ भी करता था, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट थी वो सारी चीज़ उनको कंट्रोल करने के लिए होती थी। आउटपुट यूनिट हमने देख लिया था, आउटपुट यूनिट क्या थी हमारी, जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करा रही थी हमें, जो भी हमने कमांड दी प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला फाइनल, वो कहाँ से मिला, आउटपुट यूनिट से, चाहे वो हमारा प्रिंटर हो, प्लॉटर हो या हमारा मॉनिटर हो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोरेज यूनिट्स देख लिए थे, वो यहीं पे हैं, प्राइमरी स्टोरेज जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और हमारा सेकेंडरी स्टोरेज जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर, वो भी चीज़ देख ली थी हमने। उसके बाद हमने बसेस देखी थी, हाँ उसके बाद मदरबोर्ड देख लिया था, कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड देख लिया था, फिर हमने बसेस देखी थी। बसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक थी इंटरनल एक थी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को एक्सपांशन बोलते हैं, इंटरनल को सिस्टम बसेस बोलते हैं। सिस्टम बसेस के अंदर फिर हमने तीन बसेस और देखी थी, जिसमें कौन कौन सी थी, कंट्रोल बसेस, एड्रेस बसेस और डेटा बसेस। ठीक है, यहाँ तक देखा था, आई होप समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो समझना पड़ेगा। ठीक है, अब और चीज़ देखते हैं, टिट बिट, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान। UPS, चलो आ जाओ इधर, उड़ो मत। UPS की सबसे पहले फुल फॉर्म याद करो, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, बिना रुपए पावर सप्लाई दे रहा है हमारा UPS, मेरा वाला ख़राब हो रखा है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, UPS की फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना। बफर, टेम्परेरी स्टोरेज, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज आए, रजिस्टर। ठीक है, एक्यूमुलेटर, ये भी रजिस्टर एक तरह से, करता क्या है कि ये जो अर्थमेटिक्स और लॉजिकल जो रिज़ल्ट होते हैं उसको स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद हमारा है टाइम स्लाइस, किसे कहते हैं, CPU के अंदर एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम। ठीक है, टाइम स्लाइस कहते हैं बेसिकली जो टास्क करने के लिए हमारा CPU जो पर्टिकुलर टाइम लेता है उसको कहते हैं बेसिकली टाइम स्लाइस। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखना। स्पीड ऑफ प्रोसेसर, हमारे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है किस में हम मेज़र करते हैं, मेगा हर्ट्ज में, ये थोड़ा सा याद रखना। सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेगा हर्ट्ज में, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेज़र करते हैं हम, और हमारे जो परम है उसकी, ठीक है, हाँ मल्टी पेटाफ्लॉप था, PF मतलब वो हो जाएगा टिक, ऐसा इतना भी नहीं देगा कि एक मल्टी दे रहा है कि सिर्फ पेटाफ्लॉप दे रहा है। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनकी फुल फॉर्म याद रखो बस, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है मेन मेमोरी से, बस इतना ही है टिटबिट में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टिटबिट में एक्यूमुलेटर, और ये हमारा मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ही रह गया बस। इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। फैच क्या करते हैं, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहली जो दो साइकिल है फैच और डिकोड, ये फैच साइकिल हो गई, और जो दूसरी साइकिल है ये हो गई हमारी फैच साइकिल, और जो दूसरी साइकिल है स्टोरेज एंड एग्जीक्यूशन, ये किस में आ गई, एग्जीक्यूट साइकिल में। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितने पार्ट होते हैं, चार, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, और साइकिल कितनी होती है, दो साइकिल होती है, फैच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल, प्रोसेस चार होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम देते हैं किस में देते हैं, बिट्स में देते हैं, जीरो और वन। ठीक है, जीरो वन क्या चीज़ है, हमारी मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसको देखो थोड़ा सा, जीरो वन क्या है, हमारी मशीन लैंग्वेज है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन लेता है, इनपुट्स लेता है, दो पार्ट में लेता है, एक हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, एक हो गया हमारा डेटा। क्या चीज़ है ये? द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। डेटा अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ होती है, अनप्रोसेस्ड। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन भी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई हमारी, एक मिनट बताता हूँ अभी रुको। ऑपरेशन जिसे हम ऑप कोड भी बोलते हैं, फिर होता है एक ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड हो गई, फिर ऑप कोड एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर, ऑपरेंड उसका पैरामीटर है, एग्जीक्यूट करता है ये इसका, पैरामीटर है, ठीक है। जो हमारा प्रोसेसर होता है दो इनपुट्स लेता है, एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शन, एक होता है हमारा डेटा। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है ऑपरेशन जिसे ऑप कोड बोलते हैं जिससे एग्जीक्यूट होती है चीज़ें, और दूसरा होता है ऑपरेंड, वो काइंड ऑफ पैरामीटर होता है, और ये पैरामीटर डिपेंड किस पे करता है कि क्या चीज़ ऑपरेशन करनी है, ठीक है, यही दे रखा है बस। उसके बाद हमारी टिटबिट्स दे रखी है, अभी दोबारा से इसको देखेंगे क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मशीन लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है ज़्यादा, बाकी ये ऑपरेंड ऑपरेंड ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, लेकिन फिर भी इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखना। टिटबिट देखते हैं फिर हम क्वेश्चन बैंक की तरफ जंप करेंगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, मशीन साइकिल, पाइपलाइनिंग एंड सॉकेट्स। सॉकेट्स कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वो जिसमें आप जो है डाल के अपना फ़ोन कनेक्ट कर रहे हो, सॉकेट्स टाइप के वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूशन स्पीड को जो है बढ़ाते हैं। इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन प्रीफेच, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। मशीन साइकिल, डिफाइंड बाय द टाइम दैट टेक्स टू फेच टू ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मींस पैरामीटर्स फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म एलयू ऑपरेशन एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ रजिस्टर। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मशीन साइकिल क्या चीज़ है, कि जो भी हमने जो भी कमांड वगैरह दी वो पूरा हुआ, ALU के अंदर गया, फिर स्टोरेज हो गया दोबारे से, फिर हमें रिजल्ट मिल गया, वो जो पूरी साइकिल हुई उसको हम क्या कहेंगे, मशीन साइकिल कहेंगे। सॉकेट्स हमने समझ ही लिया। जो हमारा पाइपलाइन है बेसिकली ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच ये चीज़ करता है, इंस्ट्रक्शन को बेसिकली इंप्लीमेंट करता है हमारा पाइपलाइनिंग, ठीक है, बस ये चीज़ है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इतना, ये वाला टफ बना रखा है लैंग्वेज बोल बोल के। इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट ठीक है, पाइपलाइनिंग बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, उस बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिल रही है उनको वो बस जस्ट पैरेलल लगा देता है कि एक बाय एक जो है वो इंस्ट्रक्शन होती रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं पाइपलाइनिंग, ठीक है, बस इतना बोल रखा है। सॉकेट्स हमारा सिंपल हो गया, सारी चीज़ हो गई हमारी, एक बार हम क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीज़ हमारी दोबारा से रिकॉल हो जाएगी, ठीक है, रिवाइज हो जाएगी तो सारी चीज़ समझ आएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा से मैं देख लूँगा, मिली इन तीनों चीज़ों में ही होगा लास्ट वाली, बाकी तो सारी चीज़ बहुत इजी थी। क्लियर है? 5 मिनट बाद करें रिवाइज दोबारे, बोलो बोलो। ठीक विनीत। ओके ठीक है, 5 मिनट लो, 5 मिनट में सोचो क्या पढ़ा है, ठीक है, 5 मिनट बाद फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे एक बार। ठीक है, चलो जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए बोल देता हूँ। देखो मशीन साइकिल क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है जिसमें कमांड जाती है, ठीक है, कमांड जाने के बाद वो जो कमांड होती है वो प्रोसेस जो होती है ALU के अंदर गई, फिर स्टोरेज में गई, वो सारी चीज़ें जो पूरी एक साइकिल होती है उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, मशीन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, पाइपलाइनिंग क्या होती है, पाइपलाइनिंग बेसिकली खूब सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को वो पैरेलल लगा के वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट करता है, उससे क्या होता है कि हसल वसल नहीं होती, एग्जीक्यूशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग बोलते हैं। सॉकेट्स क्या होते हैं, सॉकेट्स बेसिकली वो जो मदरबोर्ड के अंदर पीछे की साइड देखा होगा ना कंप्यूटर के अंदर, जो हम वो लगा देते हैं डेटा केबल लगा देते हैं अपनी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर ऊपर की साइड होता है या सामने की साइड होता है, कभी कभी चार्जिंग के लिए भी उसे यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, उसको कहते हैं सॉकेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई, अब 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक पे एंटर करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, 5 मिनट सिर्फ।